अगर तुम मिल जाओ जमाना छोड़ देंगे हम, अगर तुम मिल जाओ।
यू आर लिसनिंग टू WTOR 770 AM यंगस्टाउन टोरंटो।
अपने प्यारों को पैसे भेजें लैम्पफाई के जरिए, पैसे पहुंचे मिनटों में, वो भी आसान और महफूज तरीके से, गुड एक्सचेंज रेट के साथ। $150 भेजने पर $0 फीस। इसके अलावा अगर आप $100 से ज्यादा भेजें तो साइन अप करते वक्त रेफरल कोड E10 इस्तेमाल करें और अपनी पहली ट्रांजैक्शन पर 10% कैशबैक हासिल करें, यानी $500 भेजने पर $50 कैशबैक की सूरत में आपके अकाउंट में वापस। लैम्पफाई की 10% कैशबैक ऑफर के लिए आज ही लैम्पफाई की फ्री ऐप अपने फोन में डाउनलोड करें। विजिट lampfire.com फॉर टर्म्स एंड कंडीशंस।
ट्रकिंग वाले वीरो ध्यान नाल सुनो, ट्रक जिद्दां दा भी चलाउंदे हो, मैनुअल जां ऑटोमैटिक, क्विक ट्रक ल्यूब चेते आही ना रखियो। ट्रक दी बढ़िया सर्विस लई क्विक ट्रक ल्यूब लाओ जी। तीजी लोकेशन भी खोलती है, एग्जिट 579 फ्रॉम हाईवे 401 इन नापनी। आहो जी, कोई अपॉइंटमेंट नहीं, ड्राइव थ्रू फैसिलिटी, एग्जिट 579 फ्रॉम हाईवे 401 इन नापनी। क्विक ट्रक ल्यूब द वन स्टॉप शॉप, 519-622-0660 या quicktrucklube.com। QTL, बिकॉज वी केयर।
अपनी कम्युनिटी का सब तो वड्डा, वधिया क्वालिटी वाला ते सब तो पुराना सोडी फर्नीचर हर घर दी पहचान बन चुकी है।
ओ फिर बने भी क्यों ना, क्योंकि बेडरूम सेट, सोफा सेट, मैट्रेसेस, डाइनिंग टेबल, डेकोरेटिव आइटम्स, गल कीजिए सारे घर दा फर्नीचर वधिया क्वालिटी ते डिस्काउंटेड प्राइस ते मिल जांदा। सोडी फर्नीचर तो 3 साल लई नो ब्याज।
142 कैनेडी रोड, ब्रैम्पटन, 9058747471।
वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। हर साल वांग इस वरे भी ओंटेरियो सिख एंड गुरुद्वारा कौंसल वालों खालसे दा साजना दिवस डाउनटाउन टोरंटो विखे होवेगा, जो सवेरे 9 बजे CNE दे प्रोग्राम तो शुरू होके 1 बजे नगर कीर्तन सिटी हाल नूं रवाना होवेगा। समुची साध संगत नूं हुम हुमा के इस नगर कीर्तन विच शामिल होने की निम्रता सहित बेनती की जाती है।
ਇਸ ਸਾਲ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਡਾਊਨਟਾਊਨ ਟੋਰਾਂਟੋ ਦੇ ਵਿੱਚ 27 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੇ ਲਾਗਲੇ ਗੋਦਰਾ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।
मेरी पूरे साल की सेविंग $400 हुई है।
मेरी सेविंग $350।
मेरी सेविंग सिर्फ $100।
और मेरी सेविंग सबसे ज्यादा हुई है, मैंने सेव किए हैं $1,775।
क्या चमत्कार किया, मुझे भी गुर सिखाओ ना।
भाई बात सादा सी है, हमारे पास 2 गाड़ियां और 1 घर है और इन सब की इंश्योरेंस मिलाकर मैंने जबरदस्त सेविंग की है। और ये जादू किया है ऑल स्टेट पिकरिंग एजेंसी के राजा बादशाह ने। आप भी अपनी गाड़ी और घर के इंश्योरेंस में खूब सेविंग कर सकते हैं। टर्म एंड कंडीशन अप्लाई। ऑल स्टेट पिकरिंग एजेंसी के राजा बादशाह,
6477-290-3773.
ओ पाजी की होया,
मेरा कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गया, 15 साल बाद सब खत्म।
की किद्दा?
मार्क कार्नी अते लिबरल्स कार्बन टैक्स आसमान नु छुंदिया, फ्यूल प्राइसेस, कंपनी साउथ वाल मूव कर रही हैं, ट्रकिंग दा बिजनेस खतरे च है।
इस चलाक बैंकर नेता कैनेडियन जॉब्स US भेज दितियां, ट्रंप दे सामने एक कमजोर है, हुन होर जॉब्स खत्म हो जानगियां।
कॉमन सेंस कंजर्वेटिव कार्बन टैक्स दा खात्मा करनगे ते नौकरियां लेके आउणगे।
कार्नी ते भरोसा नहीं कीता जा सकदा, मैं तां पीएफ पॉली एफ नु ही वोट पाऊं।
दिस मैसेज इज ब्रॉट टू यू बाय द कंजर्वेटिव पार्टी ऑफ कैनेडा।
डोनाल्ड ट्रंप वापस आ गया अते कैनेडा दियां जॉब्स खतरे च पा रहे हैं। सानू एक ऐसा लीडर चाहिए जो उसके मुकाबले का होवे ते कैनेडा नू अगे ले जा सके। पर मार्क कार्नी बहुत डिस्ट्रैक्टेड है, गल्ला वड़ियां वड़ियां ते कम कुछ भी नहीं। कैनेडियन स्ट्रगल कर रहे ने, आसमान छूंदियां मॉर्गेजेस ते ग्रोसरी प्राइसेस नाल ते बिजनेसेस खत्म हो रहे ने। कैनेडा फर्स्ट कंजरवेटिव ट्रंप दा मुकाबला करनगे अते कैनेडा नू पहल देंगे। पीएफ पॉली ऑफ टैक्सेस विच कटौती अते कीमतां कट करके जॉब वापस लेके आणगे। मार्क कार्नी इस वास्ते नहीं है, पीएफ पॉली ऑफ है।
दिस मैसेज इज ब्रॉट टू यू बाय द कंजरवेटिव पार्टी ऑफ कैनेडा।
770 AM دی نشریات سنن تے حالات حاضرہ تو باخبر رہن دے واسطے نیوز انفارمیشن انالیسز الیکٹرک گڈیاں دے وچ ای آواز آفیشیل ایپ یا ساڈی ویب سائٹ eawaz.com لوکل نمبر 6478724900
ویلکم بیک تمام سامعین جو ہمیں سن رہے ہیں 770 ایم ڈائل پر پروگرام ساز و آواز. میں ہوں آپ کا ہوسٹ عامر احمد اور جناب آپ کا ہمارا ساتھ رہے گا تقریباً 8 بجے کے قریب. اور خبریں میں نے آپ کو ساری سنا دی ہیں لیکن وہ کہتی ہیں میں فریش خبریں لے کے آئی ہوں, میں اینٹی وہ ہوں, اینٹی یہ ہوں, اینٹی نیگیٹو میرا بلڈ گروپ بھی ہے تو میں چھوڑوں گی. تو اب کیا کریں, ریسپیکٹ فرسٹ ہے نا, میرے لیے ریسپیکٹ فرسٹ ہے. اپنے آپ کو غلط بھی ثابت کر لوں گا اگر سامنے والا جو ہے وہ مجھ سے سینئر ہے, ظاہر ہے 45 میں پیدا ہوں, سینئر ہی ہوں.
40
میں پیدا
ہوں, ہم نے 45 کی وار دیکھی.
تو بڑوں کا جو ہے نا وہ ریسپیکٹ آپ نے اللہ نے کہا ہے, جیسے اپنے ماں باپ کے بارے میں کہا ہے نا, انلیس اینڈ انٹل وہ آپ کو خدا کے خلاف نہ کریں یعنی شرک میں مبتلا نہ کریں تو آپ نے ان کی ہر بات ماننی بس. اور بڑے ہمارے لیے جیسے بھی ہوں وہ اسی لیول پر, میں سمجھتا ہوں میری اپنی ٹریننگ یہی ہے کہ اگر وہ آپ کو کسی ایسی چیز میں آرڈر دے رہے ہیں جو کہ اللہ اور اس کے قانون کے خلاف جاتی ہے تب تو آپ جہاد کر لیں, مطلب یعنی ان کے خلاف بھی چلے جائیں یا ان کو ایکسکیوز کر لیں. اگر وہ اللہ اور اس کے قانون کے خلاف آپ کے پیرنٹس یا آپ کے بڑوں کی بات نہیں جا رہی ہے تو چاہے وہ آپ کے اوپر وہ پہاڑ بھی گرا رہی ہو آپ نے اس کو ایکسپٹ کرنا ہے, آپ نے اس پہ اف نہیں کرنا, آپ نے لبیک کرنا ہے. یہ ہمیں بچپن سے سکھایا گیا ہے, اس لیے شازیہ ملک صاحبہ سے بھی میں کبھی یہ بھی 40 میں پیدا ہو کے تو میں تو 80s والا آدمی ہوں, یہ 40 والی آدمی, تو 40 سال تو یہی گیپ ہو گیا سیدھا. آئیے جناب, اچھا میں آج شیمپین کلر کا کارپیٹ نہیں بچھا سکتا کیونکہ باہر بہت ویٹ ہو رہا ہے تو میں ان کے لیے ٹینٹ لگوا دیتا ہوں شیمپین کلر کا, اس میں ان کو خوش آمدید کہہ رہے تھے. آئیے پروگرام کو خوش آمدید کہتے ہیں. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.
ڈبلیو ایس کیسے ہو؟
زندہ ہوں.
اچھا پھر تو مجھے کہہ رہے تھے آپ نے مجھے نظر لگائی اسی لیے میں ہاف سلیوز کے وہ ٹی شرٹ نہیں پہن رہا.
یہ آج میں نے پھر مجھے صبح میں بس یہ ٹی شرٹ پہن کے نکلا تو مجھے آپ یاد آئیں. میں نے کہا یا اللہ آج ہی ویدر خراب ہونا تھا. میں جس دن یہ ہاف ٹی شرٹ پہنتا ہوں اور آپ,
تو یعنی کہ شیطانی میری نہیں ہے تمہاری ہے. تم جب جب یہ ہاف سلیو کا ٹی شرٹ پہنو گے تب تب کینیڈا کا موسم خراب ہوئے گا.
یا تو پھر میرا بجٹ بڑھا دو بھائی, اتنے وہ کہتے نا اتنے اتنے میں آپ آ رہی ہے مہنگائی میں ریسیشن میں
بس
فل لے لوں.
ہاں نہیں نہیں تمہارے پاس تو 7 million یو ایس ڈالر ہے نا, تم تو کر سکتے. ریسیشن تو ہم جیسے غریبوں پہ آئے گا جن کے پاس نہیں ہے یہ ملین.
اچھا ایک سیکنڈ میری طرف کیمرہ کرنا بھائی, دیکھیں آپ مجھے دیکھ رہے ہیں, دیکھ لیا اسے سن لیا, اب آپ دوسری طرف کیمرہ کریں. اب کون غریب لگ رہا ہے مجھے بتا دیں, آنےسٹی سے بتا دیں اپنی, واللہ قلہ معافی تمام مشکل کبیر آسان. آپ بتا دیں دیکھ کر جو لوگ ٹی وی پر دیکھ رہے ہیں کہ اس وقت کون جو ہے وہ کیا دکھ رہا ہے. بس خامدم تھینک یو.
اچھا اس کا مطلب ہے کہ تمہیں بھی ڈاکٹر انکش کے پاس جانے کی ضرورت
نہیں. وہ بھی آرفا کو وہ کالر آیا ابھی اور اس نے آرفا پا کو اسپانسر کر دیا. اچھا کیسا کیا میں اب یہی بولنے والا تھا آرفا پا کو, میں نے کہا وہ کال یہ شادی جی کو ملانی چاہیے
कि भाई शादी जी मैं आपको स्पॉन्सर कर
स्पॉन्सर कर रहा हूँ।
आगे कहते हैं पापा मैं आपका नहीं, उसको कहता है क्या आपका मैं जो हूँ वो वैसे ही
बेरी हूँ,
सियासी तौर पे खिलाफ रखता हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप जो हैं ये ट्रीटमेंट क्या फिलर और ये बोटॉक्स वोटॉक्स करा रहे हो और आई विल स्पॉन्सर,
वाइटामिन सी की वो लगवा लें, ड्रिप लगवा लें,
ड्रिप लगवा लें।
यस,
तो उसको क्या मालूम था कि ये ऑफर शाजी जी को देनी
है। ओहो
जनाब, अगर आप सुन रहे हैं तो आपका
अरे ना दोनों मुझे पहचानो कहाँ से मैं हूँ कौन
यार, कितना जुल्म हो रहा है
यार, कितना जुल्म हो रहा है, ना कोई मिलियन डॉलर दे रहा
स्पॉन्सर हो रही
ना है। कोई स्पॉन्सर कोई चीज अब बूथी कोई स्पॉन्सर ही नहीं कर रहा यार, ऐसी मनहूस बूथी लेकर हम दुनिया में आए हैं, जिस दिन से आए हैं टेरिस टेरिस लग रहे हैं, ये जिंदगी भी कोई जिंदगी है, ये जीना भी कोई जीना है।
हाँ ये वो नहीं, ये जीना भी जीना है, ये पेट से छोटा सीना है, जिनके पेट बड़े होते हैं उनके लिए हमने जुमला बनाया, वो पेट बड़े उसका तो मेरा भी थोड़ा पेट निकल गया, लेकिन जिन अंकल के तो पुलिस वालों की तो पुलिस वालों के लिए शेर बना था, ये जीना भी क्या जीना है, पेट से छोटा सीना है, मतलब कहने को तो पुलिस वाले कुछ है उनका पेट ही दिख रहा होता था, हालांकि पुलिस मैन इज लाइक
बिल्कुल इसको तो होना चाहिए,
पाकिस्तानी पुलिस तो यही है कि जी पेट से छोटा सीना,
टेड वड्डा होना चाहिए, इससे पहले कि आप दरवाजे में एंटर हुए आपका टेड एंटर हो रहा होता है ना, ऐसे चक्कर है,
ये भी आसान काम नहीं है,
ये आसान काम नहीं है, इतना बड़ा पेट करना
बहुत मुश्किल है,
बहुत मुश्किल है।
बहरहाल ऐसा करें कि वो
खबरें सुना ले थोड़ी सी,
खबरें तो मैं सुना चुका हूँ,
अच्छा अच्छा,
सारी ब्रेकिंग न्यूज मैं दे चुकी,
तुमने दे दी है,
आप उस पर पानी फेरने आई है तो आपका,
चलो मैं अन ब्रेकिंग न्यूज दे देती हूँ,
नहीं नहीं वो वाली फ्रेश वाली जो सुबह से आपने पानी डाल रही
है, पानी डाल के फ्रेश कर रहे हैं जिसको
जिसको आप सुबह से पानी डाल रही हैं, वो सब्जी वाला जैसे पानी डालता था ना बाजी, सुबह से बाजी फ्रेश सब्जी है, बाजी फ्रेश सब्जी, शाम में जाओ वो फ्रेश सब्जी पानी डाल,
ये भी पीछे में आई है
खबरें तो पीछे से,
ये खबरें भी पीछे से आए हैं भैया, हाँ जी
रेडियो पर सुना दे,
सुनाई देना, ये पीछे से आई है,
उनका ब्लड प्रेशर ज्यादा हाई ना करें,
वैसे
ही क्या होता है सड़क स्लिप हो रही है और अगर वो आगे पीछे खबर के हो गए तो मैं नहीं चाहता किसी का नुकसान हो,
नुकसान हो ठीक है, चलो जी हम खबरते हैं। ओके जी जनाब, दिस पार्ट ऑफ द प्रोग्राम इज बीइंग ब्रॉट टू यू बाय राजा बादशाह, तो आप जाके जो है आमिर साहब के जरा नाम शाम लें, आमिर साहब के जरा गले चले भी लग के जाओ, शायद आपको जो है ना वो अच्छी वो आ जाए और आप भी 7 मिलियन US डॉलर कमा लें, नंबर वन। और इसके अलावा आप अगर राजा बादशाह के पास जाओगे और इसका नाम लोगे तो आपको पता है इसके साथ तो बड़ा प्यार है उनका, हमारे तो थोड़े थोड़े पैसे उन्हें बचाएं, इसके 1775 बजाएं, तो आप उनके पास जाएं, ऑल स्टेट के साथ होते हैं और ऑटो और होम इंश्योरेंस जो है वो आपको देंगे बड़े अच्छे रेट्स के ऊपर, जो शायद आपको मार्केट में और कोई नहीं देगा। और जनाब आप जाएं हमारे सुल्तान भाई के पास, ब्रैम्पटन टीवी एंड अप्लायंसेस पे होते हैं और बहुत जबरदस्त उनके पास बंडल डील्स होते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स के, तो जाहिर है कि आम मार्केट से आपको अच्छे दामों पे मिलेंगे, और अगर आप जाएंगे अपना उनके से रिप्लेस करना चाहते हैं या आप नया लेना चाहते हैं तो बहुत अच्छी डील आपको देंगे। फिर जनाब अगर आपको खाना खाना है उसका एंजॉय का मजा लेना है क्योंकि अभी वीकेंड भी आने वाला है, तो आप फैसल चड्ढा साहब के पास जाएं, उनके दो रेस्टोरेंट्स हैं विलेज टेस्ट, एक मिसेस सागा में, एक ओकविल में, तो फिर वो आपको बहुत ही जबरदस्त खाने खिलाएंगे क्योंकि बहुत ऑथेंटिक शेफ्स हैं उनके पास। और अगर आपको सुविधाएं चाहिए कोई भी इन्वेस्टमेंट्स की तो आप अदनान अलवी साहब के पास जाइए, लाइफ टाइम ग्रुप के प्रेसिडेंट हैं और बहुत जबरदस्त किस्म की वो आपको इन्वेस्टमेंट के सर्विसेज देते हैं, तो आप उनको कांटेक्ट कर सकते हैं। नाजिया रहमान जो है उनका नया डेंटिस्ट्री जो ऑफिस है वो अब रिजवे पे खुल गया है, तो वहां पे जाइए डेंटिस्ट्री ऑन रिजवे, तो वहां पे आपको वो दांतों के बहुत सारे अच्छे सर्विसेज जो हैं वो देंगे। तो इस तरह से आपने अच्छे अगर इसी तरह कपड़े भी पहनना चाहते हैं तो फिर आप जाएंगे स्पीयर एंड मके पे, ठीक है जी। उनका नया जो लोकेशन है वो है ब्रिटानिया रोड के ऊपर, आप उधर जाइए और आपको बहुत जबरदस्त वो जो हैं वो इटालियन वूल के कपड़े ऑफर करेंगे, तो फिर आप देखेंगे। और जनाब इसके साथ साथ जो है आपको पता ही है नासिर शाह साहब का भी ओपन माइक कैफे, कहते हैं बहुत अच्छे खाने होते हैं, तो आप वहां जाके भी एंजॉय का मजा ले सकते हैं, ठीक है जी। तो पायल ज्यूलर्स पे अगर आपको कुछ और गिफ्ट शिफ्ट चाहिए तो आप असलम भाई के पास जा सकते हो, तो पायल ज्यूलर्स के पास बहुत जबरदस्त इंडिया पाकिस्तान सिंगापुर के डिजाइन हैं और आप वहां पे भी एंजॉय का मजा लें, ठीक है। अच्छा जनाब सबसे पहले तो हम आपको कुछ खबरें सुनाए, इससे पहले कि दिल दुखाने वाली जो खबर आई है ट्रंप साहब के टैरिफ्स की वो उसकी तरफ लेकर जाएं। आज भी जो नैनोज के रिसर्च आए हैं सामने और कुछ दिनों से आ ही रहे हैं उसमें लिबरल्स जो हैं अभी भी 8 पॉइंट का लीड बनाए हुए हैं कंजर्वेटिव पार्टी के ऊपर, और फेडरल इलेक्शंस को मेरे ख्याल में اب جو ہے تقریباً 11-12 دن ہو گئے ہیں. اس میں جو لوگوں کی سپورٹ ہے 45% لبرلز کے ساتھ ہے, 37% کنزرویٹوز کے پاس ہے. لبرل پارٹی ہر جگہ پہ لیڈ کر رہی ہے ایکسپٹ فار پریریز, کیونکہ یہاں پہ کنزرویٹوز جو ہیں وہ ڈومینیٹ کر رہے ہیں. پریریز کے اندر کنزرویٹوز کے پاس 59% سپورٹ ہے, لبرلز کے پاس 24%. لبرلز جو ہیں وہ لیڈ کر رہے ہیں اٹلانٹک ریجن کے اندر 64%, جو کنزرویٹوز ہیں وہ 27%. کیوبیک کے اندر لبرلز جو ہیں 49% سپورٹ ہے, کنزرویٹوز کے پاس 21%. جب یہ پوچھا گیا کہ آپ پریفر کس کو کرتے ہیں ایز پرائم منسٹر, 49% نے کہا ہم چوز کریں گے کارنی کو, 34% نے کہا پی ایف علی ایف کو, 5% نے جگمیت سنگھ کو. اسی طرح 52% جو ویمن ہیں وہ سپورٹ کرتی ہیں لبرلز کو, 29% کنزرویٹو. اسی طرح جو آدمی ہیں جب ان سے پوچھا گیا تو 38% آدمیوں نے کہا کہ ہم لبرلز کو بیک کریں گے, لیکن 46% مین نے کہا کہ ہم کنزرویٹوز کو کریں گے. اور آج جو یہ اب ٹیرفز اناؤنس کیے ہیں تو کارنی صاحب جو ہیں کل تھرسڈے کو اپنی کیبنٹ کے ساتھ ایک میٹنگ بھی کر رہے ہیں. اونٹاریو کے پریمیئر ڈگ فورڈ صاحب جو ہیں انہوں نے کچھ انٹرویوز دیے ہیں اور اس میں انہوں نے کہا جی کہ کینیڈا بھی ڈراپ کرے گا ٹیرفز آن گڈس ٹو یو ایس اگر ٹرمپ صاحب نے یہ ٹریڈ وار جو ہے وہ روک دی. ایک انٹرویو جو تھا وہ دے رہے تھے اور اس میں انہوں نے کہا جی کہ کینیڈا کا, انہوں نے پوچھا, انٹرویوئر نے پوچھا ڈگ فورڈ صاحب سے کہ جو $60 billion کا یہ جو ریٹیلیٹری ٹیرف آپ نے اناؤنس کر دیا ہے یو ایس پروڈکٹس پہ, اس کے اوپر آپ کیا کہیں گے؟ تو انہوں نے اس کا یہ جواب دیا. فورڈ صاحب جو ہیں اس وقت کرنٹلی چیئر کر رہے ہیں کینیڈا کی کاؤنسل آف فیڈریشن آف پریمیئرز کو, اور بائی لیٹرل ٹاکس جو ہیں وہ کافی ہولڈ کر چکے ہیں. زیشان ذرا دکھا دیں ڈگ فورڈ صاحب کی تصویر. تو وہ کہتے ہیں جی کہ میں یو ایس آفیشلز جو ہیں ان کے ساتھ کافی دفعہ میں بات کر چکا ہوں, اور یہ جو ٹیرفز یو ایس گڈز پہ جو لگائے جاتے ہیں یہ تو ویسے فیڈرل گورنمنٹ کی طرف سے زیادہ تر لگائے جاتے ہیں, لیکن فورڈ کہتے ہیں جی کہ وہ بالکل ولنگ ہے کہ وہ یہ ٹیرفز کو ہٹا دیں گے اگر ٹرمپ صاحب بھی ایسا کریں گے, کیونکہ کینیڈینز کو اس طرح کا کچھ پرابلم نہیں ہے. تو جناب یہ بات چیت جو ہے وہ چلی ہے. اچھا جناب, اب بہت سارے کینڈیڈیٹس جو ہیں وہ پارٹیز کو چھوڑ چھوڑ کے جا رہے ہیں. کنزرویٹو کینڈیڈیٹ جو ہیں لورین سنگھ, انہوں نے آج کہا ہے, نیو ویسٹ منسٹر برنبی ملڈرڈ ویل سے ہیں, انہوں نے کہا جی کہ اب وہ بالکل رن نہیں کر رہے ہیں فیڈرل الیکشنز کے اندر. اور یہ تیسرے اب کینڈیڈیٹ ہیں جو کہ کنزرویٹو پارٹی سے جنہوں نے کہ بولا ہے کہ ہم نہیں کر رہے ہیں. کنزرویٹو کیمپین کے جو سپوکس پرسن ہیں انہوں نے کہا جی کہ بالکل ہم کنفرم کرتے ہیں ان کا ایگزٹ فرام دا ریس, اور لورین سنگھ جو ہیں وہ اب نہیں ہیں ہمارے کینڈیڈیٹ. یہ جو ہیں اب اس لسٹ میں شامل ہو گئے ہیں جس میں کہ پہلے ہی جو کنزرویٹو پارٹی کے مارک میکنزی جو کہ رن کر رہے تھے, اونٹاریو کی ونسر کیوم سیک لیک شور سے, اور سٹیفن مارکی جو ہیں فرام مونٹریال سے, لورے سے مری سے جو کر رہے تھے ان کے ساتھ. تو یہ جناب جو ہیں تیسرے اب نہیں کر رہے. تو اب مجھے پتا نہیں ہے کہ اس کا جلدی سے ریپلیسمنٹ جو ہے کنزرویٹو پارٹی کیسے ان کا لے کر آ سکتی ہے. آج کی جو بڑی نیوز ہے ظاہر ہے کہ وہ یہی ہے کہ جو ٹرمپ صاحب ہیں انہوں نے کہہ دیا ہے کہ میں ساری دنیا کے اوپر ٹیرفز لگا رہا ہوں, اور ٹرمپ صاحب نے اس کو کہا ہے لبریشن ڈے. انہوں نے کہا جی لبریشن ڈے, اور انہوں نے کہا جی کہ میں ریسٹور کروں گا یو ایس کی مینوفیکچرنگ, اور ری ٹول ہم کریں گے سپلائی چینز کو ٹو اوائڈ فیز, بٹ ایکسٹرا جو کاسٹس ہیں وہ ظاہر ہے کہ جو ہوگا امپورٹر وہ اپنے پاس نہیں رکھے گا, وہ کنزیومر کو اس کو کرے گا شفٹ کرے گا, اور اس کی وجہ سے بے تحاشا لے آفس بھی آئیں گے. ٹرمپ صاحب جو ہیں انہوں نے اپنے آج میجرز جو ہیں وہ اناؤنس کیے وائٹ ہاؤس کے روز گارڈن میں ایک پریس کانفرنس میں ایٹ 4 PM. انہوں نے کہا جی کہ میری گورنمنٹ جو ہے 25% ٹیرف جو ہے آن آل فورن میڈ آٹوز جو ہے اس کے اوپر لگا رہی ہے افیکٹو ایٹ مڈ نائٹ تھرسڈے, یعنی کہ کل سے یہ سارے جو ہیں یہ افیکٹو ہو جائیں گے. یو ایس, انہوں نے کہا جی کہ یو ایس واز لوٹڈ اور ریپڈ اینڈ پلنڈرڈ بائی ادر نیشنز. تو وہ کہتے ہیں جی کہ میں اس کو روکنا چاہتا ہوں, لیکن ہم ان نیشنز کو جو ہمارے اوپر ٹیرفز لگاتے ہیں ان کو ہم بیڈلی ٹریٹ نہیں کریں گے, اور جتنا وہ ہم پہ ٹیرف لگاتے ہیں اس کا ہاف ہم ٹیرف ان کے اوپر لگائیں گے. اور یہ جو ہے یہ میں اس لیے ڈکلیئر کر رہا ہوں کہ اٹ از پارٹ آف آور جو ہے وہ ڈکلیریشن آف اکنامک انڈیپینڈنس ہے. اب اس کے اندر جو ڈیٹیلز تھوڑے سے جو ابھی تک سامنے آئے ہیں ہم آپ کو بتا رہے ہیں کہ 10% بیس لائن جو ٹیرف ہے वो कनाडा के ऊपर नहीं लगाया जा रहा, लेकिन अभी तक क्लियर नहीं उन्होंने किया है, क्लैरिफाई बिल्कुल नहीं किया है कि मेक्सिको और कनाडा पे टोटल कितना आएगा। 25% तो ऑटो के ऊपर शायद आ सकता है, लेकिन 10% बेस लाइन कैनेडा और मेक्सिको के लिए अभी तक अनाउंस नहीं किया है। ऑल टुगेदर उन्होंने 25 कंट्रीज जो हैं उनके ऊपर ये टैरिफ्स अनाउंस किए हैं, जिसमें कि पाकिस्तान है, पाकिस्तान पे उन्होंने लगाए हैं 29% टैरिफ्स, इंडिया पे 26% टैरिफ्स, बांग्लादेश पे 37% टैरिफ्स और श्रीलंका पे 44% टैरिफ्स। तो ये जो है जी हमारे रीजन की, मैंने कहा मैं थोड़ी सी आपको खबर दे दूं तो डिटेल्स और जो है हम आपको देंगे। ये जो आज की सबसे बड़ी खबर आप देख रहे हैं इसके साथ साथ जो आई है टैरिफ्स के साथ साथ, वो है एलॉन मस्क से रिलेटेड। तो आज ट्रंप साहब ने अपनी कैबिनेट को आज क्लोजली बिल्कुल ओपनली बता दिया है कि इनके जो बड़े क्लोज एल आए हैं एलॉन मस्क, अब वो रिजाइन कर रहे हैं फ्रॉम गवर्नमेंट रोल, एंड दिस इज अ बिग ब्रेकिंग न्यूज। और ये न्यूज जो थी दी थी पॉलिटिको ने, और उनके मुताबिक बहुत दिनों से ये डिस्कशन चल रही थी। आपको पता ही है कि एलॉन मस्क को काम दिया गया था कि गवर्नमेंट एफिशिएंसी डिपार्टमेंट आपने रन करने और फंडिंग आपने रोकनी और डिसमेंटल करना है बहुत सारे यूएस एजेंसीज को जो बेतहाशा जो है वो स्पेंडिंग कर रहे हैं। अभी बहुत दिनों से ये खबर आ रही थी कि शायद मस्क इनके साथ और आगे नहीं चलेंगे, लेकिन कोई ट्रंप साहब स्पेसिफिक डेट नहीं दे रहे थे। और तो टेस्ला के जो शेयर्स थे वो बहुत ज्यादा नीचे आते जा रहे थे, 2% इन अर्ली ट्रेडिंग वो नीचे आए थे, हालांकि फिर उन्होंने रिकवर किया था। तो ट्रंप साहब से जब अभी बिगनिंग ऑफ दिस वीक ही रिपोर्टर से पूछा गया था कि भाई आपको लड़ाई हो गई एलॉन मस्क से, ये क्या, उसने कहा नहीं कि ही इज एन अमेजिंग गाय, लेकिन जाहिर है कि वो बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां भी रन करता है तो उसको किसी पॉइंट पे तो वापस जाना ही था। और मस्क जो थे उनको बनाया गया था स्पेशल गवर्नमेंट एम्प्लॉई, तो इनका मेरे ख्याल में ये जो टर्म है अब मई एंड तक एंड हो जाएगा। और मस्क ने भी कहा है जी कि मैं अपना मोस्ट ऑफ द काम जो कि है टू द ट्यून ऑफ $1 trillion इन फेडरल स्पेंडिंग, उसको मैं कट करने में तब तक कामयाब हो जाऊंगा और फिर जाहिर है कि उसके बाद ये टाटा बाय बाय कह देंगे। और ये पहले ही लोगों को पता था कि ये ज्यादा देर तक नहीं चल सकेगा, क्योंकि जाहिर है जिस बंदे ने इतनी बड़ी कंपनियां चलानी है वो कैसे उनको निग्लेक्ट करके और जो है वैसे 4 साल के लिए गवर्नमेंट में बैठेगा। खासतौर पर इनकी टेस्ला जो थी वो बहुत ज्यादा सफर कर रही थी। तो इस तरह एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज हुई है जी, अमेरिका में डेमोक्रेटिक सेनेटर कोरी बुकर जो हैं उन्होंने नया रिकॉर्ड कायम किया है फॉर द लॉन्गेस्ट स्पीच इन सेनेट हिस्ट्री इन यूएस। वो अपने कदमों पे खड़े रहे 25 आवर्स टू डिलीवर अ वेरी फायरी स्पीच अगेंस्ट ट्रंप्स अनकॉन्स्टिट्यूशनल एक्शंस, और वो बाथरूम तक भी नहीं गए उन 25 घंटों में। तो उन्होंने रिकॉल किया एक फेमस सीन जो फ्रैंक कैप्रा की 1939 की फिल्म जो आई थी क्लासिक मिस्टर स्मिथ गोज टू वाशिंगटन, उससे। और इन्होंने रिकॉर्ड इसलिए कायम किया क्योंकि इससे पहले जो लॉन्गेस्ट सेनेट की स्पीच थी वो दी गई थी साउथ कैरोलिना के स्ट्रॉम थर्मोड ने, जो कि 24 आवर्स 18 मिनट्स दी थी अगेंस्ट सिविल राइट्स एक्ट ऑफ 1957। बुकर जो है वो फोर्थ ब्लैक सेनेटर है जिसको के सेनेट बॉडी ने इलेक्ट किया था, और उसने मीडिया से बात करते हुए बाद में कहा कि ये जो स्ट्रॉम का रिकॉर्ड था वो हमेशा उससे नफरत खाते थे क्योंकि ये सेनेट जैसी जो बहुत ही पाक जगह है वहां पे एक ऐसे आदमी ने खड़े होके जो है वो स्पीच करता रहा है कि जिसमें कि वो जो है ये हाईलाइट करता रहा है कि ब्लैक्स जो हैं उनको सेनेट का हिस्सा नहीं होना चाहिए। तो मुझे वो हमेशा से बुरा लगता था और मैं हमेशा से उसका रिकॉर्ड तोड़ना चाहता था और ये अब मैंने तोड़ा है। तो ये बड़ी एक इंटरेस्टिंग खबर थी। ट्रंप साहब जो हैं जी अब वो यूनिवर्सिटियों के भी बिल्कुल जो है कट कर रहे हैं सारे फंडिंग। तो अब उनकी एडमिनिस्ट्रेशन व्यू कर रही है ये जो बिलियंस ऑफ डॉलर्स की फंडिंग हार्वर्ड यूनिवर्सिटी को दी जाती है कि क्या ये दिया जाएगा कि नहीं, क्योंकि वो कहते हैं जी कि ये जो प्रो पैलेस्टीनियन प्रोटेस्ट हैं उनको इनके कैंपसेस के ऊपर अब हम क्रैक डाउन इनके खिलाफ कर रहे हैं। और उन्होंने थ्रेटन किया था न्यूयॉर्क बेस्ड आईवी लीग स्कूल कोलंबिया को इससे पहले, और उसको कहा था कि $400 मिलियन की जो फेडरल फंडिंग है हम इसको कम कर रहे हैं। उसके बाद कोलंबिया यूनिवर्सिटी ने बहुत सारे गवर्नमेंट के डिमांड्स माने थे और उनको कहा था कि हम आपको जो आप कह रहे हैं वो हम करेंगे, लेकिन अभी तक भी ट्रंप साहब की गवर्नमेंट ने अनाउंस नहीं और कन्फर्म नहीं किया है कि वो या तो रेस्टोर या पॉज करेंगे इन ग्रांट्स को। गवर्नमेंट जो है उसने कहा है कि ज्वाइंट टास्क फोर्स टू कॉम्बैट एंटी सेमिटिसिज्म है वो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी का भी जो उसको दिया जाता है $255.6 मिलियन और जिस सिर्फ हार्वर्ड को नहीं उसके एफिलिएट्स को भी दिया जाता है, तो उसको हम जो है रिव्यू कर रहे हैं, क्योंकि ये इन्होंने बिल्कुल ये दे हैव फेल्ड टू प्रोटेक्ट स्टूडेंट्स ऑन कैंपस फ्रॉम एंटी सेमेटिक डिस्क्रिमिनेशन व्हाइल दे प्रमोटेड डिविसिव आइडियोलॉजीज। एजुकेशन सेक्रेटरी जो है लिंडा मैकमोहन, उसने कहा है कि हार्वर्ड ने बिल्कुल गलत जो है उसका तरीका इख्तियार किया और अपने कैंपस को डेडिकेट बजाय इसके के एक एकेडमिक एक्सलेंस के लिए करते, ये उन लोगों का माउथपीस बनते रहे हैं जहां पे के दूसरे स्टूडेंट्स जो है वो फेस सेफ फील नहीं करते थे। हार्वर्ड के जो प्रेसिडेंट हैं गार्बर, उन्होंने अलबत्ता कहा है कि अगर इन्होंने ये फंडिंग रोकी तो ये बहुत सारा जो लाइफ सेविंग रिसर्च और इनोवेशन ये यूनिवर्सिटी के ऊपर करते थे उसको जो है ये खत्म कर देंगे, बिल्कुल मार देंगे, क्योंकि ये बड़ी बड़ी जो यूनिवर्सिटीज हैं ये गवर्नमेंट फंडिंग के ऊपर चलती हैं, खासतौर पे जो इनके रिसर्च डिपार्टमेंट्स हैं ये बहुत ज्यादा डिपेंडेंट होते हैं फेडरल फंडिंग के ऊपर। तो अब जनाब कोई भी बचा नहीं रह गया है इनके जो है गुस्से से ट्रंप साहब के। ट्रंप साहब ने आज एक फॉर्मली डील साइन की है बिटवीन यूके एंड मॉरिशस ओवर द फ्यूचर ऑफ चैगोस आइलैंड्स। ये जो चैगोस आइलैंड्स हैं इसकी डिटेल्स आज यूके की गवर्नमेंट ने दिया है। सर पॉल स्टॉर्मर के जो स्पोक्स पर्सन है उन्होंने कहा जी कि अब ये हमारे बीच में डिटेल्स जो हैं वो हम डिस्कस कर रहे हैं मॉरिशस गवर्नमेंट के बीच में और डील को फाइनलाइज कर रहे हैं, और इसमें जो यूके है उसने सॉवरेनिटी जो है इसकी चैगोस आइलैंड्स की ये मॉरिशस को देनी है फॉर लीजिंग बैक डिएगो गार्सिया जो कि लार्जेस्ट अटॉल है इन इंडियन ओशन में, और उसको कहते हैं जी कि 99 इयर्स के लिए ये हमको देंगे और इसमें एक्सटेंशन अनदर 40 इयर्स भी जो है वो हो सकेगा। ये जो है जो अब डिएगो गार्सिया जो है वहां पे यूके और यूएस अपना मिलिट्री बेस बनाएंगे, इसके ऊपर रिपब्लिकन ने आज बहुत ज्यादा एतराज किया है। उन्होंने कहा जी कि ऐसा करने से आप चाइना के जो इंटरेस्ट है उनको रीजन के अंदर प्रमोट करेंगे, और स्टार्मर को भी आज अपनी कैबिनेट में और इंग्लैंड में काफी क्रिटिसिज्म का सामना करना पड़ा। यूके ने ये जो फर्स्ट फॉर्मल निगोसिएशन मॉरिशस के साथ चैगोस आइलैंड पे जो है वो पहली दफा शुरू किए थे, और इसको ये लोग जो है ब्रिटिश इंडियन ओशन टेरिटोरी भी कहते हैं। ये 2022 में टॉक शुरू हुए थे और यूके ने इनके साथ फिर कहा था कि शायद 90 मिलियन पाउंड्स पर ईयर वो देंगे टू लीज इट, और लीडर्स ने कहा है कि ना तो जो यूके का इस तरह से इंटरेस्ट सर्व होगा ना ही ये जो इतने पैसे दे रहे हैं उससे कोई इनको फायदा होने वाला है। तो ये जनाब यानी कि अब हर जगह पे जो है ना वो लुच जरूर तला हुआ है हमारे अंकल सैम ने। आज यूएस ने फिर से अटैक्स किए जी यमन के हुदेदा के एरिया के अंदर जिसमें के चार लोगों की डेथ्स हुई हैं, और इसके बाद इन्होंने अनाउंस किया है कि सेकंड एयरक्राफ्ट कैरियर जो है वो भी यहां पे डिप्लॉय करेंगे, और मैरीटाइम ये जो मिडल ईस्ट के अंदर सॉरी वॉर प्लेन्स जो है मिडल ईस्ट के अंदर वो भी लगाएंगे। अनीस अलशाबी या जो स्पोक्स पर्सन है हुती हेल्थ मिनिस्ट्री के, उन्होंने कहा जी कि यूएस जो है वो उसने यहां पे अटैक किया है, और इसके अलावा उन्होंने अल मंसूरिया जो है हुदेबिया के गवर्नरेट में वहां पे भी किया है, और बहुत सारे एम्प्लॉयज जो है उनकी डेथ्स हुई हैं। जीशान दिखाएं वो जरा हुतीस के ऊपर अटैक जो है यमन में यूएस का। मीडिया ने रिपोर्ट किया है कि इसके अलावा हज्जा का जो रीजन है नॉर्थ वेस्ट में और सादा का जो रीजन है नॉर्थ में उसमें भी यमन के ऊपर जो है वो अटैक्स किए गए हैं। तकरीबन जब से ये इन्होंने लड़ाई और अटैक्स शुरू किए हैं यूएस ने इनके ऊपर यमन पे, उस वक्त से 60 डेथ्स हो चुकी हैं, और ये इनका मिलिटरी ऑफेंसिव जो है यूएस का हुथी फोर्सेस के अगेंस्ट है, जिन्होंने कहा था कि रेड सी से कोई भी जो है इजरायली शिप्स गुजरेंगे तो उसके ऊपर हम अटैक करेंगे। इसके साथ साथ यूएस ने आज अप्रूव किया है पोटेंशियल सेल ऑफ 5.58 बिलियन इन F-16s टू फिलीपींस। उन्होंने कहा जी कि ये हमारा पार्टनर है और उसकी जो ये जो स्ट्रेटेजिक पार्टनर है इसका सिक्योरिटी बढ़ाने के लिए हमको इसको इतना देना ही पड़ेगा F-16s, क्योंकि ये चाइना से बहुत ज्यादा फियर में है। अच्छा जनाब एक और आपके ऊपर जो है बिजली गिरा दें, जितने भी यूरोपियन विजिटर्स हैं जो कि अब यूके को जाएंगे इंग्लैंड को जाएंगे उनको अब परचेज करना पड़ेगा ई परमिट इन एडवांस फॉर द ट्रिप्स फ्रॉम टुडे, यानी कि आज से 2nd of April से इनको करना पड़ेगा। और वो कहते हैं जी कि ये हम इसलिए कर रहे हैं कि अपने इमिग्रेशन सिक्योरिटी को हम स्ट्रेंथन कर सकें ताकि लोगों को प्रॉपरली स्क्रीन किया जा सके। ये जो ई ट्रैवल ऑथराइजेशन स्कीम है इसमें जो है उनको उनके लिए है जिनको कि वीजा नहीं चाहिए है यूके के अंदर एंटर होने के लिए, लेकिन उनको प्री ट्रेवल ऑथराइजेशन खरीदना पड़ेगा ऑनलाइन, जो कि 10 pounds का है एंड 12 euros का है, और ये फिर इंक्रीज किया जाएगा 16 pounds से पे फ्रॉम April 9. ये आयरिश सिटीजन्स के लिए नहीं है, ये बाकी जो नॉन ईयू जो है उनके लिए है, लेकिन इसमें जो ये हैं लोग जो कि यूएस कनाडा ऑस्ट्रेलिया से आएंगे उनको भी अब इसमें शामिल किया जाएगा। यानी कि अब अगर आपने कनाडा से जाना है तो अगर April 9 के बाद जा रहे हैं तो 16 pounds का आपको ये प्री स्क्रीनिंग लेना पड़ेगा। होम जो ऑफिस है उसने आज कहा है कि ये ईटीए जो है ये काफी सिंपल है, आप यूके का ईटीए ऐप डाउनलोड कर ले और ये मिनटों के अंदर एप्लीकेंट्स जो हैं वो अपना फोटो और बायोग्राफिक डिटेल्स जब डालेंगे और कुछ क्वेश्चंस आंसर करेंगे तो इमीडिएटली विद इन मिनट्स आपको ये आ जाएगा और आप फिर जो है वो इस पे ट्रैवल कर सकते हैं। एक दफा ये आपका डेटा ईटीए पे आ गया तो फिर वो उसको आपके पासपोर्ट से लिंक कर देंगे, तो फिर ये आपको बहुत सारे मल्टीपल विजिट्स के लिए ये आप कर सकेंगे फॉर द नेक्स्ट 2 years, तो आप मल्टीपल टाइम्स जो है विजिट कर सकेंगे यूके को। तो बहरहाल जी नवियां फीसा और बताओ। आज नेतन्याहू साहब जो हैं जी उन्होंने बड़ा ही बुरा मनाया है क्योंकि उनके जो दो बड़े ही क्लोज एड्स हैं या उनको और जो कतर है उसको बड़ा बैड नेम दिया जा रहा है क्योंकि उनके खिलाफ एक पुलिस जो इन्वेस्टिगेशन है वो खोल दी गई है। इसलिए जो दो लोग हैं ये इनके एडवाइजर थे योनाथन उल्ट्रिच और ये फॉर्मर इनके जो स्पोक्स पर्सन थे एली फेल्डस्टीन, इनको अरेस्ट किया गया था कि ये अलेज्ड पेमेंट्स जो हैं इनको कतर से हुई हैं एज पार्ट ऑफ द यू नो इनकी जो डील्स थी, तो ये प्रोब किया जा रहा है। दोनों ने ही कहा है कि हमारा इसके साथ कोई इस रॉन्ग डूइंग के साथ ताल्लुक नहीं है। नेतन्याहू ने आज एक्यूज किया है पुलिस को कि वो अननेसेसरली इनको हॉस्टेज बनाए हुए हैं, हालांकि इनके खिलाफ कोई भी केस नहीं बनता है और बिला वजह इनकी जो है लाइफ मिजरेबल कर रहे हैं। इसके ऊपर कतर ने भी बहुत ज्यादा रिएक्शन शो किया, उन्होंने कहा जी कि कतर के खिलाफ ये स्मीयर कैंपेन है जो आप चला रहे हैं, हालांकि हमारा बहुत मेजर रोल है, वी मीडिएट बिटवीन इसराइल एंड हमास इन गाजा वॉर। इसके साथ साथ जो नेतन्याहू साहब की लिकूद पार्टी है उसने भी एक्यूज किया है इसराइल के अटॉर्नी जनरल्स ऑफिस एंड शीन बेट चीफ को कि वो झूठा केस इन लोगों के बारे में बना रहे हैं क्योंकि वो इनको ब्लैकमेल करना चाहते हैं ताकि ये टेस्टिमनी दे प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ इसके जो करप्शन केसेस हैं उसके लिए। और आपको पता ही है कि कुछ एक्सपर्ट्स का कहना है कि ये गाजा का वॉर इसीलिए बढ़ाए हुए है क्योंकि जैसे ही इसने वॉर रोका नेतन्याहू ने वैसे ही इसके खिलाफ जो है करप्शन के केसेस खुलेंगे, तो इसलिए ये चाहता नहीं है, वो चाहता है कि वॉर चलते रहे। और वैसे भी जो उनकी ऑपोजिशन जो है उसने भी कहा था कि हम तुम्हारे साथ खड़े नहीं रह जाएंगे तो इसका गवर्नमेंट भी गिर सकता है, तो इसलिए ये वॉर जो है बढ़ाए हुए हैं। आज काफी जो है चाइना ने माइंड किया क्योंकि म्यांमार की जो जनता है उसके ट्रुप्स ने फायर किया चाइनीज रेड क्रॉस एड कॉन्वॉय पे जो कि यहां पे आए हुए हैं। आपको पता ही है बहुत ही डेवस्टेटिंग अर्थक्वेक म्यांमार में आया था फ्राइडे को, 7.7 मैग्नीट्यूड उसका था और उसमें तकरीबन 2,886 कुछ लोग तो कहते हैं कि 3,000 से ज्यादा लोगों के डेथ हुए हैं, 4,639 क्रिटिकली इंजर्ड हैं। जाहिर है कि ये अब डेथ रेट आगे बढ़ेगा। जनता स्पोक्स पर्सन जाओ मिंग टुन ने कहा है कि जी चाइनीज रेड क्रॉस ने हमको इन्फॉर्म नहीं किया था और वो घुस गए थे कॉन्फ्लिक्ट जोन के अंदर, तो इसलिए सिक्योरिटी टीम ने फिर हवा में फायर किए थे जब ये कॉन्वॉय गुजर रहा था, उसको स्टॉप करने का बोला, वो स्टॉप भी नहीं हुआ। चाइनीज फॉरेन मिनिस्ट्री के स्पोक्सपर्सन ने कहा जी कि एड टीम और सप्लायर्स जो हैं उनको सेव रखना चाहिए और उनके ऊपर ऐसा कुछ अटैक्स नहीं करना चाहिए। उन्होंने ऑल पार्टीज जो हैं इन म्यांमार उनको कहा है कि ये जो रेस्क्यूअर्स हैं इनको सेफ पैसेज आप दें और ये जो ट्रांसपोर्ट का रूट है इसको बिल्कुल ओपन रखें ताकि इसमें लोगों को रिलीफ जो है पहुंच सके। चाइना एंड रशिया आर फ्रेंड्स फॉर एवर नेवर एनिमीज, इसकी आज बात की चाइना के फॉरेन मिनिस्टर वांग यी ने जो कि 3 day विजिट पे हैं मॉस्को के अंदर जहां पे कि वो टॉक्स कर रहे हैं पुतिन साहब के साथ और इसके बाद वो अपने काउंटर पार्ट सर्जे लैवरोव के साथ भी मिले हैं। तो इन्होंने जो है चाइनीज फॉरेन मिनिस्टर वांग यी ने बड़ा इनको वेलकम किया, उन्होंने कहा कि हम इस चीज को भी मगर वेलकम करते हैं कि आपके जो टाइज है वो यूएस के साथ भी इम्प्रूव हो रहे हैं, लेकिन हमारे अपने खुद के बहुत सॉलिड लीगल हमारे बेसिस है अपना स्ट्रेटेजिक कोऑपरेशन को बढ़ाने के लिए। चाइना रशिया जो है उन्होंने नो लिमिट्स स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप जो है वो बढ़ाया है, और पुतिन ने कहा है कि मैं थाउजेंड्स ऑफ ट्रूप्स जो है वो जो उनके लड़ रहे थे उसके ऊपर कोई इन्होंने एतराज भी नहीं किया था। यानी कि यूक्रेन की वॉर की हम बात करें, जब फरवरी 2022 में इन्होंने अपने भेजे थे तो चाइना ने उसके ऊपर कुछ एतराज नहीं किया था, तो इसलिए क्योंकि वो कहते हैं जी हमारा स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है। चाइनीज फिर जो प्रेसिडेंट है शी जिनपिंग, उनकी भी इससे पहले जो है मुलाकात हुई थी, और कहा जाता है कि पिछले 10 ईयर्स में 40 टाइम्स ये दोनों जो है वो मिले हैं, और इनके बीच में जो टाइज है वो भी काफी अब डीप और स्ट्रेटेजिक है। जाहिर है कि दोनों कम्युनिस्ट कंट्रीज भी है और दोनों ही जो है वो एक ही उसके हैं, ब्लॉक के लोग हैं। तो है पाकिस्तान के अंदर जी कल से खबरें आ रही थी कि प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी का तबीयत काफी खराब है और उनको हॉस्पिटल में डाला गया था। आज उनको आइसोलेट किया गया है क्योंकि पता चला है कि उनको कोविड-19 हो गया है। ये डिटेल्स जो है उनके फिजिशियन डॉक्टर आसिम हुसैन ने दिए है, और उन्होंने कहा जी कि एक प्राइवेट हॉस्पिटल में इनको लाया गया था नवाब शाह से, जहां पे कि उनका ख्याल किया जा रहा है, और उनसे मीटिंग्स जो हैं बिल्कुल करना लोगों का मना कर दिया गया है। उनकी कंडीशन को मॉनिटर बड़े क्लोजली किया जा रहा है और उनका हेल्थ का असेसमेंट हम जो है वो जल्दी आपको देंगे। सिंध के सीनियर मिनिस्टर शर्जील मेमन ने कहा है कि उनका हेल्थ इम्प्रूव कर रहा है, और ये न्यूज जो आ रहे थे कि शायद ये मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए दुबई में शिफ्ट हो जाएंगे, तो दुबई में उन्होंने कहा जी कि वो बिल्कुल नहीं जा रहे हैं। प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब ने का अभी उनकी हेल्थ के बारे में पूछा और उन्होंने कहा जी कि ना सिर्फ मैं बल्कि पूरी कौम आपके हेल्थ के लिए दुआ कर रही है। भाई जान आपने कौम से पूछा आप अपनी तरफ से बातें कर रहे हो, नहीं हम चाहते हैं अल्लाह सेहत दे भाई जरदारी साहब को, हम तो नहीं चाहते किसी के साथ कोई बुरा, लेकिन एंटायर नेशन की आप बात कैसे कर सकते हो शहबाज शरीफ साहब, आप अपना खुद का बात करो खाली। बलूचिस्तान नेशनल पार्टी मेंगल ग्रुप के जो चीफ हैं सरदार अख्तर मेंगल, उन्होंने अनाउंस किया है जी कि वो कल से यानी कि थर्सडे से जो है वो मोर्चे निकालने शुरू करेंगे अगेंस्ट रीसेंट अरेस्ट ऑफ राइट्स एक्टिविस्ट, जो कि अब काफी दिन हो गए हैं जिनको, और हालांकि कल हमने आपको बताया था कि जो ये थी ये बलूच यकजहती कमेटी के लोगों को इन्होंने छोड़ा है कराची में, लेकिन फिर भी वो कह रहे हैं जी कि हमारे साथ जो गवर्नमेंट की कमेटी बनाई गई थी जिसके के अंदर जो है वो जहूर अहमद बुलेदी और बख्त मोहम्मद काकड़, सरदार नूर अहमद बंगुलजई जो है वो आए थे इनके साथ बातचीत करने के लिए, लेकिन उसका कुछ भी फायदा नहीं रहा है क्योंकि वो इनको कन्विंस नहीं कर सके हैं कि ये मोर्चा खत्म करो। तो उन्होंने कहा जी कि अब हम लॉन्ग मार्च जो है वो करेंगे वद से क्वेटा की तरफ, जो कि उन्होंने लास्ट टाइम भी कहा था, और उन्होंने कहा था कि ये जो आपने अरेस्ट किए हैं बलोच यकजहती कमेटी के लोगों को, इनको फौरन आप छोड़े। तो इन्होंने भी अब अपने डिमांड्स रखे हैं, आप देखेंगे कि गवर्नमेंट इनके डिमांड्स कैसे फुलफिल करती है। अच्छा जी अच्छी खबर सुना देते हैं पाकिस्तान से कुछ। पंजाब पुलिस की एक एसपी जो है आयशा भट्ट, उनको जनाब सेलेक्ट किया गया है फॉर एक्सलेंस इन परफॉर्मेंस, जो है इनको अवार्ड दिया जाएगा 2025 का। ये जो अवार्ड है ये दिया जाता है बाय इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ वुमेन पुलिस, जो कि रिकग्नाइज करते हैं इन लोगों की, खासतौर पे एसपी भट्ट की भी डिस्टिंग्विश सर्विस एंड कमिटमेंट टू पुलिसिंग। ये हर साल जो है वुमेन पुलिस ऑफिसर्स को दिया जाता है उनकी अच्छी सर्विस के लिए। भट्ट को ये अवार्ड जो है दिया जाएगा एट 62nd IAWP एनुअल ट्रेनिंग कॉन्फ्रेंस इन ग्लासगो स्कॉटलैंड, और ये सेरेमनी होगी बिटवीन सितंबर 8 से 12 के बीच में, और इस वक्त ये सर्व कर रही हैं एज सिटी ट्रैफिक ऑफिसर गुजरांवाला में। तो ये जो है अच्छी जी खबर है। एक और भी अच्छी खबर है पाकिस्तान से, और वो ये है कि आपको पता ही है कि पाकिस्तानियों के पास हमेशा कहते हैं जी पैसे नहीं है, गरीब कौम है, लेकिन एक नई रिपोर्ट आई है कि पाकिस्तानी बे इंतहा फिलेंथ्रोपिस्ट हैं और बहुत सारा चैरिटी के अंदर पैसे देते हैं। तकरीबन ये जो सर्वे एक नया आया है वो बताता है कि 50 मिलियन पाकिस्तानियों ने तकरीबन 2.19 बिलियन $ जो है 2024 में ज़कात के अंडर दिया था। ज़कात जो है टिपिकली कैलकुलेट होती है 2.5% ऑफ टोटल अमाउंट एक्सीडिंग निसाब। तो ये जो सर्वे था ये फोन पे किया गया था 2024 में, एंड इट वाज डन बाय इंटरनेशनल सेंटर फॉर टैक्स एंड डेवलपमेंट एंड लम्स यूनिवर्सिटी, और लोगों को बड़ी हैरत हुई ये सुन के कि जो लोग ज़कात दे रहे हैं वो सरपास की थी ऑफिशियल डेवलपमेंट जो फंड है पाकिस्तान का 2022 का, उससे ज्यादा लोगों ने ज़कात दी थी। और ये जो डेवलपमेंट फंड था ये था 376 बिलियन पाकिस्तानी रुपीस का। तो इसका मतलब है कि लोग देना चाहते हैं, अगर जो हैं हमारे जो ऊपर बैठे हैं वो थोड़े ईमानदारी से काम करें। हिंदुस्तान के अंदर भी जनाब चीजें गरमाई हुई हैं और आज फिर से जो है वक्फ लॉ जो है उसके ऊपर काफी मारामारी चली। कांग्रेस एमपी गौरव गोगोई जो हैं उन्होंने कहा जी कि इंडिया ब्लॉक जो है अब अपोज करेगा चेंजेस टू वक्फ लॉ। उन्होंने कहा जी कि ये बिल अटैक है ऑन द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इसके जवाब में बीजेपी के रविशंकर प्रसाद ने कहा कि ये जो वक्फ प्रॉपर्टीज है ये तो वेकेंट है और इसको लूटा जा रहा है, तो गवर्नमेंट जो है एक लॉ ला रही है इसको रेगुलेट करने के लिए। लेकिन गोगोई ने कॉन्स्टिट्यूशन का साइट किया और उन्होंने कहा जी कि ये बिल्कुल तुम कंप्लीट पिक्चर लोगों को नहीं दे रहे हो, ये जो तुम लोग वेरियस प्रोविजंस लेकर आए हो। गोगोई ने कहा कि जो गवर्नमेंट है वो मिसलीड कर रही है लोगों और पार्लियामेंट को। इस बिल के चार ऑब्जेक्टिव्स हैं: डायल्यूट कॉन्स्टिट्यूशन, डिफेम माइनॉरिटी कम्युनिटीज, डिवाइड इंडियन सोसाइटी एंड डिसएनफ्रेंचाइज माइनॉरिटीज। ये जो बिल है उसको कोई भी माइनॉरिटी रिप्रेजेंटेटिव्स के साथ, खासतौर पर मुसलमानों के साथ जो है, जाहिर है कि वक्फ बिल है तो उसको उनके साथ बिल्कुल ये डिस्कस नहीं किया गया था और ये बिल जो है ड्राफ्ट किया है, नहीं किया इसको माइनॉरिटी अफेयर्स मिनिस्ट्री ने। तो किसने किया है इसको? माइनॉरिटीज जो हैं उनको फोर्स किया जा रहा है कि वो अपने रिलीजियस आइडेंटिटी के बारे में बात करें, जबकि हम इस मुल्क में करते ही नहीं थे, हमारा मुल्क सेक्युलर कंट्री था। तो अभी दूसरे फेथ्स को भी आप बोलेंगे कि तुम भी अपना रिलीजियस आइडेंटिटी दिखाओ। तो ये जो चीज है सारी की सारी ये कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 26 के अगेंस्ट है। और ये वो लोग हैं यानी कि मुसलमानों के बारे में उन्होंने बात की कि जिन्होंने इंडिया की इंडिपेंडेंस में फाइट किया था, सेक्रीफाइस दिया था अलोंग मंगल पांडे इन 1857। आप उनका रेप्यूटेशन खराब कर रहे हो जबकि 2 लाख उलेमा तक जो है उनको भी शहीद कर दिया गया था। तो आप इस कम्युनिटी को डिफेम करना चाह रहे हैं और जिन्होंने कि हमारा क्विट इंडिया जो मूवमेंट था अगेंस्ट द ब्रिटिश जो है उसमें इन्होंने साथ दिया था और ब्रिटिश का जो डिवाइड एंड रूल का पॉलिसी था वो आप अब फॉलो कर रहे हैं जिसको कि इन्होंने हमारे साथ अपोज किया था। प्रसाद ने इसके ऊपर कहा जी कि चर्च कम्युनिटी भी इस बिल को जो है बहुत फेवर कर रही है क्योंकि चर्चेस जो है वो भी बहुत ज्यादा एनक्रोचमेंट्स फेस कर रहे हैं बाय वक्फ बोर्ड, और अगर कुछ करप्शन चल रहा होगा और वक्फ जो है अपनी प्रॉपर्टीज जो है वो ऐसे ही इल्लीगल तरीके से बढ़ाता जा रहा होगा तो फिर हम चुप करके नहीं बैठ सकते हैं। तो काफी गर्मा गर्मी रही जी। 24th कांग्रेस ऑफ कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया जो नाडु के मादुराई में हो रही है उसने कहा जी कि हमको यूनाइट होने की जरूरत है और ये जो बीजेपी का जो अथॉरिटेरियन रूल है इसको खत्म करने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि हमको इकट्ठे होकर डेमोक्रेटिक और सेक्युलर फोर्सेस जो है उनको पुश बैक करना पड़ेगा इन रिएक्शनरी फोर्सेस के खिलाफ। उन्होंने कहा जी इंडिया को सेक्युलर बेसिस पे बनाया गया था जिसके के वैल्यू से डेमोक्रेसी एंड प्रोग्रेस। सीपीआईएम के कोऑर्डिनेटर प्रकाश कारत ने जो है इनऑग्यूरल सेशन में कहा कि मोदी और उसका गवर्नमेंट जो है वो यूएस इंपीरियलिज्म के ऊपर बिलीव करते हैं और बीजेपी और आरएसएस और हिंदुत्व कॉरपोरेशन का एक नेक्सस है, इसीलिए मोदी जी के फ्रेंड्स हैं ट्रंप, इंडस्ट्रियलिस्ट मुकेश अंबानी और गौतम अंबानी और आरएसएस, और जो है उसकी मदद से ये एक हिंदू कॉम्युनलिज्म जो है इसमें और न्यू लिबरल पॉलिसीज जो है वो चला रहे हैं। तो हमको मोबिलाइज करने पड़ेगा सेक्युलर फोर्सेस को अगेंस्ट बीजेपी। ये दूसरी दफा है जब ये जो है सब लोग इकट्ठे यहां पे हुए हैं इस तरह की बात करने के लिए। उन्होंने कहा जी कि बीजेपी ने अपना मेजोरिटी टू लूज किया था लोकसभा में, लेकिन एनडीए जो है उसके पास कमांड भी नहीं है अभी 2/3 मेजोरिटी की, लेकिन फिर भी इस चीज ने भी मोदी की गवर्नमेंट की जो अथॉरिटेरियन एफर्ट्स थी उसको नहीं रोका है जो कि हिंदुस्तान और हिंदुस्तान के संविधान यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट है। तो इसलिए हमको डिस्कस करना पड़ेगा हमारा कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल, और हम चाहेंगे कि ये जो अमेंडमेंट बिल हम लाए इसमें साइमल्टेनियसली इलेक्शंस आए लोकसभा और असेंबली में भी, तो ये ना होए कि ये जी डिफरेंट डिफरेंट स्टेजेस में और दूसरे दूसरे टाइम पे किया जाता है। और जनाब आज एंटरटेनमेंट की दुनिया की सबसे जो है दुख वाली खबर, वैल किल्मर जो हैं जो कि बड़ी आइकॉनिक मूवीज में जिन्होंने काम किया जैसे कि बैटमैन वगैरह में, उनकी आज डेथ हुई है निमोनिया से एट द एज ऑफ जस्ट 65। इनकी बेटी मर्सिडीज जो है उन्होंने आज ये सारे डिटेल्स दिए हैं। इनके बहुत अरसे से पुअर हेल्थ चला आ रहा था क्योंकि उनका थ्रोट का कैंसर था, कैलिफोर्निया में ये पैदा हुए थे और वन ऑफ द हॉलीवुड मोस्ट प्रोमिनेंट लीडिंग मैन थे इन 1990s. इन्होंने अपना डेब्यू किया था इन 1984 फ्रॉम अ स्पाई स्पूफ टॉप सीक्रेट. और फिर ये टॉम क्रूज की फिल्म जो आई थी टॉप गन 1986 में, उससे बहुत ज्यादा इनको फेम मिला था, जिसमें कि इन्होंने प्ले किया था नेवल एविएटर का टॉम आइसमैन कैजेंस्की. और भी बहुत सारे इन्होंने रोल्स किए थे. बहुत ही इनकी डिफरेंट शक्ल थी और इसीलिए ये बहुत डिफरेंट किस्म के इनको रोल्स भी मिलते थे. अजय देवगन जो है जी, उन्होंने आज अपनी 58th बर्थडे मनाई है. इसके ऊपर जो रोहित शेट्टी है फिल्म मेकर, उसने सोशल मीडिया पे बहुत ही क्यूट किस्म के जो है कुछ मैसेजेस डाले और उन्होंने घिबली स्टाइल जो ट्रेंड है उसमें बहुत सारे तस्वीरें डाले. AI जो एडिट्स है उसके स्टाइल में उन्होंने इंस्टाग्राम पे डाले अपने बड़े भाई के लिए, बिग ब्रदर अजय के लिए. पहला पिक्चर जो था उसमें वो देखा जा रहा है कि इसने जो है कैमरा उठाया हुआ है और अजय जो है गूंज को पीट रहा है. सेकंड में वो देख रहे हैं कि ये दोनों कैमरा के पीछे हैं और एक सीन ऑब्जर्व करने हैं. एक में ये दोनों हग कर रहे थे. इसके साथ साथ इनकी वाइफ काजोल जो है, उन्होंने भी बड़ा इनको स्वीट सा लेकिन क्विर्की सा मैसेज दिया है. उन्होंने कहा कि ऑल कूल पीपल आर बॉर्न इन ऑगस्ट बट डोंट माइंड विशिंग यू हैप्पी बर्थडे, थैंक यू फॉर ऑलवेज बींग ओल्डर देन मी. तो इस तरह का फनी सा उन्होंने मैसेज दिया. और जनाब सबसे बड़ी खबर, न्यूजीलैंड ने सेकेंड ओडीआई में पाकिस्तान को हराया फिर से. 208 रन बनाए हैं जी पाकिस्तान ने, जबकि उसको बनाना था 293 का टारगेट दिया गया था एट सिडॉन पार्क. इसलिए तीन मैच की ये जो सीरीज थी ओडीआई की उसमें भी ये 2-0 से लीड कर रहे हैं. अब आपको मैं जरा रिपोर्ट कार्ड बताऊं. अब्दुल्ला शफीक एक पे आउट, इमामुल हक 3, बाबर आजम 1, मोहम्मद रिजवान 5, सलमान अली आगा 9, तैयब ताहिर 13, मोहम्मद वसीम जूनियर 1, आकिफ जावेद 8. वाह 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 क्या बात है, ये खेलने गए ओडीआई. मुझे लग रहा था ये 10-10 खेलने गए हैं. T20 भी नहीं, T10 खेल रहे थे. पाकिस्तान जो था वो बहुत स्ट्रगल जाहिर है वो कर रहा था. 114 पे 8 इसके आउट हो गए थे. और बुरी खबर ये थी कि हैरिस रोफ जो था उसको कंकशन आया था क्योंकि उसके सर पे बॉल आगे लगी थी और फिर उसको मैच छोड़ के जाना पड़ेगा. लेकिन उसकी जगह पे जो रिप्लेसमेंट था नसीम शाह वो आया, बल्कि उसने सबसे अच्छी जो है वो बैटिंग की अलॉन्ग विद फहीम अशरफ. और दोनों ने जो है 60 रन का जो है वो स्टैंड बनाया फॉर 9th विकेट. पाकिस्तान जो थे 165 फिर जो थे वो उस तक इसको लेकर गए फॉर 836 ओवर्स. फहीम ने बनाए 73 ऑफ 80 डिलीवरीज और नसीम ने बनाए अपना पहला मेडन ओडीआई का जो है वो हाफ सेंचुरी इन 41 बॉल. सुफियान मुकीम ने फिर बनाया 13 नॉट आउट क्योंकि जाहिर है कि ये अब आखिरी रह गया था. सीयर्स जो है उसने 5 विकेटें लिए. न्यूजीलैंड जो था उसका बहुत ही स्ट्रांग ओपनिंग पार्टनरशिप था विद डेब्यूटांट ये जो आया है रीज मिरियो और निक कैली जिन्होंने के 50 रन का स्टैंड दिया था. हैरिस ने लेकिन आउट किया कैली को 31 ऑफ 23 बॉल्स. फिर वसीम ने रिमूव किया मैरियो को फॉर 18. डैरल मिचेल को आउट किया सुफियान ने जब उसने 18 ही बनाए थे 18 बॉल्स पे. हेनरी निकोल्स को डिसमिस किया LBW फॉर 22. न्यूजीलैंड की बहुत ही पतली हालत थी, 102 फॉर 4 थे इन 16.5 ओवर्स. लेकिन फिर आगे कैप्टन मिशेल ब्रेसवेल और मोहम्मद अब्बास और उन्होंने काफी स्टैंड दिया. फिर जो अब्बास है उनको 17 पे वसीम ने रिमूव किया लेकिन मिशेल हे जो थे वो 50 बनाने में कामयाब रहे. फहीम ने डिसमिस किया नेथन स्मिथ को 8 पे. रिजवान ने रन आउट किया बेन सीयर्स को फॉर डक. तो मैच के एंड पे रिजवान ने कहा कि हाँ ये हमें बड़ा दुख है लेकिन दिस इज पार्ट ऑफ द गेम, हार जीत पार्ट ऑफ द गेम है भाई जनाब. तो हारते हुए बड़ा गुस्सा हो गया, कोई जीत भी जाओ. तो वो कहने लगे जी कि आज हमने अच्छा नहीं खेला. नहीं भाई जाना आज नहीं, हमेशा से बहुत दिन हो गया आपको अच्छा ना खेले हुए. तो हमने स्विंग जो है उसको इफेक्टिवली उसको डील नहीं किया, यूटिलाइज नहीं किया. न्यूजीलैंड के कंडीशंस बहुत चैलेंजिंग हैं, वो तो मुझे पता ही था ये सेंटेंस बोलना है. लेकिन हम कोई एक्सक्यूजेस नहीं बना रहे हैं, हम प्रोफेशनल क्रिकेटर्स हैं, हमको कुछ डिफरेंट करना पड़ेगा. पाइजन किस दिन डिफरेंट करोगे, जिस दिन अभी सारे मर जाओगे. तो ऐसा उन्होंने कुछ काम. और जनाब न्यूजीलैंड के जो विकेट कीपर बैटर है मिशेल हे, उन्होंने जनाब बड़ा अब हिस्ट्री क्रिएट किया है. ही मेड अनबीटन 99 रन अगेंस्ट पाकिस्तान इन सेकेंड ओडीआई और 7वें नंबर पे आए थे जब स्कोर बोर्ड जो था वो उस पे 132 पर फॉर 5 था इन 26.3 ओवर्स. फिर उन्होंने 7 चौके और 7 छक्के मारे और अपना मेडन ओडीआई सेंचुरी बनाया. अभी बनाया नहीं, यानी कि 99 रन बनाए एंड ही वॉज प्लेयर ऑफ द मैच जो है उसको अवार्ड दिया गया था और ये अब शामिल हो गए हैं यूनिक लिस्ट ऑफ बैटर्स में जो नॉट आउट रहे ऑन 99 इन ओडीआई एंड ही ज्वाइंस पाकिस्तान मोहम्मद यूसुफ एंड इंडियाज वीरेंद्र सेवाक एंड ऑस्ट्रेलियाज मिशेल क्लार्क माइकल क्लार्क 16th ये बैटर हैं इन द वर्ल्ड टू गेट दिस यूनिक फीट और थर्ड विकेट कीपर बैटर हैं आफ्टर एंडी फ्लावर्स स्वप्निल पाटिल जिन्होंने ऐसा किया है एंड ही इज द सेकेंड इन न्यूजीलैंड प्लेयर्स टू बी नॉट आउट इन ओडीआई ऑन 99 ये एंड ही हैज ज्वाइंड ब्रूस एडगर हु गॉट दिस फीट इन 1984 एंड जनाब एब्सोल्यूटली अवर लास्ट न्यूज जो कि बहुत ही हैरत वाली है लेकिन है फिर भी ये न्यूज है इसलिए हम आपको सुना रहे हैं हैरिस रऊफ और सलमान अली आगा इंतहाई लालक के खराब खेल रहे हैं फिर भी दे हैव रिजन इन आईसीसी मेंस ओडीआई रैंकिंग्स अभी ये कैसे हुआ है पहने तो नहीं दिए कोई है पहन वाली दिस अच्छा जी जो लेकिन रऊफ ने बॉलिंग बड़ी अच्छी की थी जो फर्स्ट ओडीआई था अगेंस्ट न्यूजीलैंड उसके अंदर उन्होंने दो विकेट्स लिए थे फॉर 38 सो ही हैज जंप्ड 9 स्पॉट्स और अब ये 16 स्पॉट पे आ गए हैं शाहीन शाह आफरीदी इज आउट ऑफ द टॉप 10 11th पोजीशन पे ये आ गए हैं आगा ने भी सिक्योर किया है जो है वो जॉइंट 37th पोजीशन और दूसरे इनके साथ हैं न्यूजीलैंड के टॉम लेथम बड़ी हैरत की अगेन बात है कि बाबर आजम अभी भी सेकंड स्पॉट पर टिके हुए हैं ओडीआई बैटिंग रैंकिंग के अंदर इसके साथ साथ जो न्यूजीलैंड के जेकब डफी है जिसने 13 विकेट्स लिए थे अगेंस्ट पाकिस्तान उन्होंने रिप्लेस किया है वेस्ट इंडीज के अकील हुसैन को टू गेट द टॉप स्पॉट एज अ बॉलर ऑस्ट्रेलिया के जो ट्रेविस हेड है वो अभी भी T20 बॉलर्स में टॉप पे है तो जनाब ये हैं हमारी सारी आज की खबरें
ये हैं अब बासी खबरें
हाँ।
क्योंकि आपने सुना दी है
यस
बासी हो गई है
हाँ।
अब ताजा
क्योंकि पानी तुमने सारा खींच लिया ना
नहीं पानी तो जरदारी साहब का कुछ मसला चल रहा है केनाल वनाल के चक्कर में एहतजाज हो रहा है
वो कह रहे हैं कि वहाँ पे केनाल्स हम नहीं बनाने
देंगे नो केनाल्स
क्योंकि वो कहते हैं जी कि पानी की कमी हो जाएगी कराची में पाइजा पानी आ कर रहा है
लेकिन वो
ऑलरेडी भी
कल शहबाज शरीफ साहब क्या गुड न्यूज देंगे वो कौम से खिताब उसकी अंदर की खबर सुनाए ना हमारे दोस्त यारों को यार ख्वाजा आसिफ साहब ने तो आज कह दिया कि कल खिताब करेंगे और कुछ खुशखबरी देंगे कहते हैं तो वो तो नहीं कि यार वो सबको जो है वो एक एक डॉलर जो है वो एक एक रुपए जो है वो
ये भी हो सकता है वो बताएं कि उनके घर में बच्चा
यार आपका इवल माइंड जो है ना आपके इवल माइंड को सलाम है
मत तो मैं क्या है लोगों के घर में बच्चे नहीं हैं
सोचे यहाँ मैं बैठा सोच रहा हूँ इस न्यूज के बाद कि यार पाकिस्तान में पेट्रोल सस्ता हो जाएगा बिजली के बिल कम हो जाएंगे
हमारे पास बच्चे नहीं है मेरे पास नहीं है
अल्हम्दुलिल्लाह
हाँ तो फिर बच्चे आते हैं ना लोगों के घरों में
हाँ लेकिन उसका एक टाइम पीरियड होता है ना
एक्सपायरी होती नहीं कोई एक्सपायरी नहीं होती यहाँ पे कनाडा में तो 60 साल की औरत भी बच्चा पैदा कर सकती है
अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह देने के
दिन भाई मुझे ऐसा टेक्नोलॉजी है इनके पास
लेकिन जरदारी साहब देखो कुछ सरदारी साहब की कुछ बात करने के लिए हमारे साथ कॉलर आ गए कोई एक दो मिनट बात करते हैं अब जरदारी साहब का जिक्र हो गया जरदारी साहब ना आए रिस्पेक्टेड जरदारी साहब इस वक्त हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद है अस्सलाम वालेकुम
बहुत शुक्रिया आपने पानी का इशू उठाया भाई
जी
हम पंजाब के किस मामले पे ट्रस्ट करें जब भुट्टो साहब के दौर में दो केनाल फ्लड केनाल निकाले गए और वो सारा साल बहते रहते हैं अभी केनाल निकले नहीं है इस वक्त सिंध में करबला मची हुई है दो चार महीने से पानी नहीं
पानी नहीं है सर सूख रहे हैं सारे सब नदियां
अच्छा, पहले ये मामला डाउन स्ट्रीम कोटडी होता था इस वक्त गुट्टू और सक्कर तक ये सूरत हाल है
बिल्कुल सर
और जो कराची को हम पानी देते हैं भाई 80-90% दरियाए सिंध का पानी आता है इसमें ना जरदारी साहब का कसूर है न शहबाज शरीफ का कसूर है ये सारा जो पंगा किया है ना ये किया है हमारे आसिम मुनीर साहब ने ये जो है पाकिस्तान की वो आबाद जमीनें तो वो बनाना चाह रहे हैं डिफेंस सोसाइटियां और प्लाजे और प्लाट
ठीक
और ये जाके बनाने चाह रहे हैं केनाल कहाँ पे अब अरफा आ जाएंगी कि मैं फौज के खिलाफ
नहीं, नहीं।
नहीं आप सही कह रहे हो इसलिए कि आप तो हमें पता है आप पीपल्स पार्टी को चाहने वाले हो लेकिन जो वहाँ पे पीटी आए हैं ना
नहीं
जरदारी साहब जो 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 पीटी आए हैं पीटी आए भी बहुत
मैडम
पीपल्स पार्टी को नहीं चाहते
नहीं नहीं पीटीआई भी इसके खिलाफ मोर्चा निकाल रही है
पीपल्स पार्टी की हालत पतली है जरदारी साहब के पुतले जला जा रहे जाल हक के बाद अगर किसी शख्सियत के पुतले सिंध में जले वो आसिफ अली जरदारी के उनको जुल्फकार जूनियर ने और कौम परस्तों में नाक में दम कर दिया है पीपुल्स पार्टी के गुजरा सिक्योरिटी के बगैर बाहर निकल नहीं पा रहे। तो ये सूरत हाल बन गई है। देखें ये जिंदगी और मौत का मामला है, हम टेल एंड पे हैं।
बिल्कुल जी, पानी चाहिए सरदारी साहब, पानी चाहिए सिंध को, बिल्कुल चाहिए पानी सिंध।
नहीं नहीं, मैं सरदारी साहब कह रही हूँ कि आपकी बात जेन्युइन है, आपकी बात जेन्युइन है सरदारी साहब।
ना इंसाफी देखें, और ना इंसाफी देखें, हमारे सुपर हाईवे को बनाया मोटरवे, फिर हैदराबाद टू वर्ड्स आ रहा था, सक्का टू हैदराबाद मोटरवे,
उससे आगे बढ़ ही नहीं रहे
वो। नहीं जनाब, पोर्ट सिटी कहाँ है? दो पोर्ट कराची में, एक बलोचिस्तान में। यार ये पाकिस्तान के नाम पे पंजाब गर्दी नहीं करो खुदा।
चले सर, बहुत शुक्रिया।
नहीं नहीं, आप ठीक कह रहे हैं सरदारी साहब, उसकी वजह ये है कि आप ही नहीं सिर्फ बल्कि पीटीआई वाले भी बहुत ज्यादा इसके खिलाफ है, जो सिंध पीटीआई है ना आमिर
जी, जी।
उन्होंने भी बहुत सारे मोर्चे निकाले हैं, बल्कि मुझे मेरे साथ बहुत सारे लोगों ने मुझे मैसेजेस भेजे थे। अगर हो सका ना आमिर, तो कल हम जावेद खटक साहब को लेंगे अपने साथ थोड़ी देर के लिए, जो सिंध के अंदर है एंड ही इज फ्रॉम पीटीआई, और वो भी बहुत ज्यादा खिलाफ हैं इस चीज के। वो कहते हैं हम नहीं नहरे निकालने देंगे सिंध में से, क्योंकि सिंध की जो है हालत बहुत ज्यादा खराब हो जाएगी इसकी वजह से। तो सिर्फ ये जो है ये एक पार्टी नहीं बोल रही, दूसरी पार्टीज भी बोल रही हैं। तो कल मैं जावेद खटक साहब से बोलूंगी जरूर।
पानी का मसला ना बहुत पुराना है,
बहुत पुराना है,
और कराची में रहे हैं, सिंध का भी पानी का मसला रहा है। यहाँ प्रॉब्लम सिंध का भी है, मैं एक नजर समझता हूँ। देखें प्रॉब्लम कहाँ आ गई पाकिस्तान में, पाकिस्तान में आ गई प्रॉब्लम डैम ना बनाने की।
बिल्कुल, डैम
अच्छा डैम, अब वो कहते हैं जी अगर खैबर पख्तूनख्वा की तरफ डैम बना लिए तो कहते हैं जी पानी नीचे नहीं आएगा, आप सारा स्टोर कर लोगे। यकीन करें पानी बहुत है,
अरे आप लोग
पानी की कमी नहीं
है,
है
वो तो
ये
तो
मीठा पानी ना, मैं आपको बता रहा हूँ, ये इस पे पूरी एक रिपोर्ट आई थी जब मैं पाकिस्तान में था, और अब भी यही होगा हालात, आज भी यही होंगे जब मैं आ रहा बात कर रहे हैं कि मीठा पानी जाया होके बहकर समंदरों में जाता है,
समंदर में जाता है। यस दैट्स राइट,
इसको आप स्टोर नहीं करते।
तो
इसमें कसूर किसका है?
उसको सिंध गवर्नमेंट का है ना भाई।
अगर टेल एंड पे आपके पास जो भी पानी आप तक आ रहा है, देखें आज तक डैम जो है ना अयूब साहब के जमाने के बने हुए,
बस सिर्फ वही,
या मुशर्रफ साहब ने भी
1967 में जो डेवलपमेंट हुई थी जी, जो सड़कें बने, जो डैम बने, बस वही बने, बस उसके बाद नहीं बने, स्कूल बने
ना, रेलवे ट्रैक का भी बड़ा घोड़ा बिछा के गया था ना, डैम जो है अयूब साहब ने पता नहीं अल्लाह ने उनको कैसे अक्ल दे दी, उन्होंने उस वक्त डैम बनाया, तो आज तक जिंदा है, आज तक जिंदा है उसकी वजह से। देखें इंडिया पानी बहुत आसानी से रोक सकते, जितने ऊपर के जो ऊपर है नॉर्थ साइड का जो एरिया है,
लेकिन ये तो सिंध जो है तुम लोग का, ये तो अरेबियन सी के मुंह पे बैठा हुआ है, क्यों यहाँ पे एक प्लांट लगा के उस पानी, खारे पानी को साफ करके लोगों को क्यों नहीं सप्लाई किया जा रहा? भाई
पानी की कमी नहीं है पाकिस्तान में भी नहीं है, सिंध में भी नहीं है, प्रॉब्लम पानी चोरी की है।
क्योंकि ये हाँ प्रॉब्लम पानी चोरी की, उसकी वजह ये कि जैसे गल्फ कंट्रीज हैं, गल्फ कंट्रीज के पास मीठा पानी नहीं है, उनके पास भी खारा पानी है, लेकिन
सब उन्होंने आरओ प्लांट लगाए हैं।
हाँ उन्होंने अब प्लांट्स लगाए हुए हैं, वो प्लांट्स उस खारे पानी को अच्छा करते पानी करके
ये तो पीने के काबिल
करके ड्रिंकेबल बनाते हैं, बिल्कुल ऐसे, और लोगों को। तो भाई तुम लोग तो वो अरेबियन सी के मुंह पे बैठे हो, तुम्हारे इलाके में तो पानी ही पानी होना चाहिए,
प्रॉब्लम पानी का है ही नहीं,
मैनेजमेंट है। हाँ हाँ पानी का प्रॉब्लम,
प्रॉब्लम पानी चोरी का है,
मिस मैनेजमेंट, मिस चोरी है, हाँ चोरी है ना, चोरी मिस मैनेजमेंट
होता है। क्या है कि आपकी दो ढाई चैलेंज, लोग कहते हैं जी 2 करोड़ आबादी है पाकिस्तान, कराची की 2.5 करोड़ आबादी है, मैं इस बहस में नहीं पड़ता। इतना पानी आ जाता है कि आप अगर इसको सही डिस्ट्रीब्यूट करें, लाइन लॉसेस बहुत हैं, जैसे बिजली में लाइन लॉसेस बहुत हैं,
2.5 करोड़ तो अब आबादी रह ही नहीं गई।
नहीं, मैं तो एक वो बात कर रहा हूँ कि जो जिस पे सब एग्री करते हैं, आबादी पे बहस नहीं, प्रॉब्लम ये है कि आपके लाइन लॉसेस बहुत हैं, दूसरा आपकी मैनेजमेंट सही नहीं है, तीसरा आपकी चोरी नहीं है। वो टप्पी साहब थे, जो लोग जर्राई साहब मुझे सुन रहे हैं, टप्पी साहब आए थे, ठीक है, उन्होंने काफी जो है वो शोर शराबा किया, और जरदारी साहब ने उनको पावर भी दी कि भाई ये टैंकर माफिया के खिलाफ ना बस आपने क्रैक डाउन कर देना है। वो टप्पी साहब जो है वो कुछ दिन वो आज
टपते रहे,
वो हैं कहां मैं तो सवाल पूछता हूँ। फिर मुस्तफा कमाल साहब आए, एमकेएम का दौर था, मुशर्रफ साहब का दौर था, उसमें भी वहां प्लांट जो आप कह रहे हैं फिल्ट्रेशन प्लांट लगाने की बात, वो लगे, ऐसा नहीं है काम हुआ है, गली गली मोहल्लों में आरओ प्लांट लग गए थे, जहां से आप जाएं अपना मीठा पानी भर लें, मतलब वो कि गवर्नमेंट सपोर्ट थे। प्रॉब्लम यहाँ नियतों का है, प्रॉब्लम यहाँ क्या है कि जो शाजिया जी ने प्रोजेक्ट लगाया है उसका फीता शाजिया जी ने काट दिया, तख्ती शाजिया मलिक साहबा की लगी हुई है, आमिर अहमद साहब जो है अब खराब हो गया उसमें, ये मेंटेनेंस है वो नहीं करेंगे उसको सही, क्योंकि वो कुछ भी कर लें तख्ती तो शाजिया मलिक की लगी हुई है, या तो उस तख्ती को निकालें और आमिर अहमद साहब अपनी आके तख्ती लगाएं और वो फीता काटें, चलो ये भी हो गया। अब आमिर अहमद साहब की भी गवर्नमेंट नहीं है, आमिर अहमद साहब भी नहीं है, तो शाजिया मलिक साहबा या फर्ज कले आरफा मुजफ्फर साहबा आ जाती हैं, वो कहती हैं जी ये फलाएं, मतलब एक एग्जाम्पल देने के लोगों की वहाँ पर इतनी वो एक सोच है
ईगोच,
जिसकी वजह से नुकसान जो है वो कौम का हो रहा है, मुल्क का हो रहा है। हम अपने एक गड़ा खोदता है आदमी कि यार ये निशान डालता है जी यहाँ पर सड़क बनेगी, तो वो पहले ही मेंशन करके चला जाता है जी इलेक्ट्रिक की वायर यहाँ से जा रही है, गैस की लाइन यहाँ से जा रही है, इसको नहीं छेड़ना। अच्छा जी वो काम शुरू हुआ, उसके बाद कोई दूसरा आया, उसने कहा जी ऐसी की तैसी जैसा मैं कह रहा हूँ वैसा करो। तो आपने अक्सर देखा होगा गैस लाइन फट गई तामीराती काम में, पानी की लाइन फट गई तामीराती काम में, है ये क्यों होता है? इंजीनियर्स क्या झक मार रहे होते हैं? नहीं, इंजीनियर अपने काम करते हैं शाजिया जी, इंजीनियर सारा काम करके जाता है, निशान लगा के जाता है, लेकिन जो ऊपर से उसको गढ़ा खोदने वाले को जो ऑर्डर्स दिए जाते हैं कि भजन ये करना है काम, बस आपने गढ़ा खोदना है बगैर किसी मेहनत के, बगैर किसी होमवर्क के, हालांकि वो इंजीनियर बोल रहा होगा जी आपने यहाँ गढ़ा नहीं खोदना, आपने यहाँ नहीं करना, आप यहाँ खोद लें, लेकिन उसको ऑर्डर ही आता है कि भाईजान यहाँ गढ़ा खोद रहे हैं, क्योंकि उनकी सियासत चल रही है।
हाँ, सेबोटाज करना उसका काम।
तो खुदारा दुनिया भर में देखिए, कनाडा में भी सियासत हो रही है। मार्क कार्नी साहब ने सियासत करके पॉलीवर साहब को उठा दिन रात उनका इस वक्त जीना हराम किया हुआ है।
पॉलीवर साहब ने भी सेम कर रहे हैं वो भी।
नहीं देखो, पॉलिटिशियन का काम है सियासत करना, लेकिन
मुल्क का नुकसान कोई नहीं करता,
मुल्क का नुकसान नहीं
कोई भी नहीं करता, कोई भी नहीं करता भाई।
या शहर का नुकसान, मिसिसागा का नुकसान कोई नहीं करेगा, या ब्रैम्पटन का मेयर आए हुए पैट्रिक ब्राउन साहब, वो कभी नहीं सोचेंगे, चाहे जितनी सियासत हो जाए उनके साथ, उनको कोई बुरा भला कह ले।
अरे उनकी कितनी लड़ाई थी डग फोर्ड साहब के पास साथ, और अभी
मिलकर काम करते हैं,
मिलकर काम कर रहे हैं, बार बार बुला रहे हैं ब्रैम्पटन में, आओ हमको फंडिंग दो।